मैं अमित कुमार सविता जम्मू मालवणी से। कुंभ मेले की पौराणिकता आइए जानते हैं डॉक्टर अंजनी कुमार सुमन की कलम से। कुंभ मेले के स्नान को अमृत स्नान की संज्ञा दी गई है। इसे एक वर्ष के रूप में सभ्यता एवं संस्कृति के धार्मिक विकास के साथ आध्यात्मिक आयोजन के रूप में देखा जाता है। भारत में कुंभ मेले के सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। यूनेस्को द्वारा 2017 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह महापर्व एक खगोलीय संगम के उपरांत मनाया जाता है, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन में होता है। कुंभ के दौरान गंगा, जमुना, सरस्वती, शिप्रा एवं गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में श्रद्धालु आस्था की डुबकियां लगाते हैं। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है घड़ा, लेकिन यहाँ कुंभ का अर्थ अमृत स्नान कलश है, जिसका संबंध समुद्र मंथन से जोड़कर देखा जाता है। इसके संबंध में कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं जो इस बात को प्रमाणित करती है कि कुंभ मेला में कितना महत्वपूर्ण है या जीवन में पाप पुण्य कर्म से जुड़ा है। नारद पुराण में कहा गया कि कुंभ स्नान करने से व्यक्ति को मूर्त होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म पुराण में कहता है कि कुंभ स्नान करने में उतना फल प्राप्त हो जाता है जितना एक अश्वमेध यज्ञ करने के फल के रूप में होता है। मत्स्य पुराण पद पुराण में भी कुंभ की मान्यता को और प्रकार बनाते हैं, जहां एक और मत्स्य पुराण कहता है कि कुंभ स्नान 1000, काल्पनिक स्नान 100, माघ स्नान नर्मदा में 1 करोड़ वैशाख स्नान के बराबर होता है तथा इसके नहाने से मानव देह तुल्य हो जाता है। वहीं पद्म पुराण में भी यही कहता है कि कुंभ स्नान से मानव के सारे पाप कट जाते हैं एवं प्रकाशवान ईश्वर का ही रूप हो जाता है। कई लोग कुंभ को वैदिक कालीन परंपरा मानते हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इसकी शुरुआत 653 ईस्वी पूर्व को प्रयाग के तट पर हुई थी। वही कुछ श्रुतिगत मान्यताएं इसके आरंभ को आदि गुरु शंकराचार्य से जोड़कर देखती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार 8वीं शताब्दी में इन्होंने पहला अखाड़ा का निर्माण किया था। ऋग्वेद में 10वें मंडल के निवासी सूत के 7वें मंत्र में कुंभ शब्द मिलता है, जो कि इंद्र के बारे में है। इसमें इंद्र को शत्रु नाशक और जल प्रदान करने वाला बनाया गया है। ऋग्वेद के कुंभ का अर्थ कच्चे घड़े से है, लेकिन कुंभ मेला या फिर स्नान इसका कोई संबंध नहीं है। वही ऋग्वेद के 600 साल बाद लिखे अर्थवेद पहली बार पूर्ण कुंभ शब्द मिलता है, जो कि 4थे मंडल के 34वें सूक्त में है। पूर्ण कुंभ को समय का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त में गंगा, जमुना, सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है, जो कि संगम की ओर इंगित करता है। वही महाभारत और पुराणों प्रयाग का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि वेद पुराणों मेले के रूप में कुंभ का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन आस्था की मान्यताएं साक्ष्यों पर अपनी निर्भरता नहीं रखती है। जो परंपरा मान्यता चली आ रही होती है उसी का अनुसरण करते हैं। परंपरा का आरंभ कुछ भी हो, लेकिन कुछ विद्वानों के समय से इसकी महत्ता को गहरे तौर पर परिभाषित किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि माघ मकरत की रची जब होई, तीरथ पति ही आव सब होई कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मझी सकल त्रिवेणी। उन्होंने भैतिक और सांस्कृतिक स्थितियों के लिए कुंभ को श्रेष्ठकर माना है। तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह दिया कि कुंभ के दर्शन मात्र से ही दुख अद्वैतता खत्म हो जाती है। धार्मिक आस्था की माने तो कुंभ एक ऐसा पर्व है जिसे मनुष्य के अलावा देवी देवता, पृथ्वी, यक्ष, गंधर्व सभी अपनी उपस्थिति देखते हैं। इस पूर्ण अवसर पर दान भी काफी महत्ता बताई गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपने सर्वस्व कुंभ मेले में दान कर दिया था। कुंभ स्नान एवं कुंभ स्थल सेवन के धार्मिक परिणताओं को अगर मन, कर्म, वचन एवं शुद्ध अंतकरण से निभा जाए तो सचमुच यह सुयोग फल देने वाला सत्कर्म साबित हो सकता है, अन्यथा यह नंबर मात्र ही रह जाएगा और कबीर की यह पंक्तियाँ सच साबित होगी। गंगा के नहाय से कौन नर तर गए, मीन न तरे जाको जल ही में वास है। ये कथन डॉक्टर अंजनी कुमार सुमन, सहायक प्राध्यापक महाबोधि महाविद्यालय बीएड नालंदा, सहकवि साहित्यकार के कलम से लिखी गई है। जम्मू मालवणी से धन्यवाद।